تفسیر سورت محمد مدنی سورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 38 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 558، 558، حروف کی تعداد 2475 ہے، 2475. اس سورت کے دو نام ہیں، پہلا نام ہے محمد، اور محمد زیادہ مشہور نام ہے، اور یہ نام جو ہے یہ ہمیں سورت محمد کی آیت نمبر 2 سے ملتا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد. اور دوسرا نام جو ہے یہ سورت محمد کی آیت نمبر 20 سے ملتا ہے، اور دوسرا نام ہے قتال، قتال. اور آیت نمبر 20 میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ. اور قتال کا مطلب کہ سورت میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے. اب یہاں سے سورتوں کا ایک نیا گروپ شروع ہوتا ہے. پیچھے آل حوامیم جو ہے ان کا گروپ سورتوں کا مکمل ہوا، اور یہاں پہ ایک نیا گروپ شروع ہوتا ہے، اور اس میں پہلی سورت جو ہے وہ محمد ہے. اور آپ دیکھیں گی جیسے نئے گروپ میں سورت محمد، سورت فتح اس کے بعد آتی ہے، پھر الحجرات ہے، تو ان سورتوں میں جو ہے وہ ان کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، اور ان کا ادب اور احترام. اور اس کے ساتھ ساتھ سورت محمد میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے، دین حق کی خاطر جب ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی پھر لڑنے کی اجازت ہے. اور محمد کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں محمد لفظ 4 دفعہ آیا ہے، ایک سورت آل عمران میں، دوسرا سورت احزاب میں، اور تیسرا جو ہے سورت فتح میں، اور چوتھا یہاں پہ سورت محمد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. آپ دیکھیے کہ آیت نمبر اگر آپ 1 کو دیکھیں تو اس کا آغاز بڑا ہی منفرد ہے، اللہ زینا سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اللہ زینا کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اب اسم موصول عام طور پر کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے انگلش میں ہی شی کب آتا ہے؟ پہلے جیسے کسی کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر ہی شی آتا ہے نا. اسی طرح کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی مسلمان، کوئی مومن، ان کا ذکر پہلے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ زینا آتا ہے نا. تو یہاں پہ آغاز ہی اللہ زینا کا ہوا، اللہ زینا سے ہوا ہے. اچھا اگر آپ بیچ میں سے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو چھوڑ دیں، پچھلی سورت سے اس کو جوڑیں، پچھلی سورت میں اس کا لنک جو ہے وہ قائم کریں، تو آخری آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ کانہم یوم یرونا ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. اور پھر اس کے بعد آپ آگے سے سلسلہ ملائیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. تو جو فاسق ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا. اور یہ سورت ہے مدنی سورت، اور سورت احقاف جو ہے وہ مکی دور کی آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے، اور یہ سورت محمد مدنی دور کی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ. اور صرف یہی نہیں کہ خود وہ رکے اور روکا اوروں کو اللہ کے راستے سے، تو صدہ جو ہے یہ لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے، خود رکنا اور اوروں کو روکنا. पहला उनका गुनाह क्या है कि खुद उन्होंने कुफर किया, हकीकत पे पर्दा डाला। दूसरा गुनाह क्या है, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते से रुके और दूसरों को रोका। अब बताया जा रहा है कि ऐसे जो काफिर हैं, ऐसे जो फासिक हैं, फिर इनका इकाब क्या है, फिर इनकी जजा क्या है, फिर इनकी सजा क्या है। तो आयत नंबर ये एक से लेकर, और आप देखें तो आयत नंबर 3 तक अल्लाह ताला ने ईमान लाने के का भी सवाब बताया है, नेकों को उनकी नेकी का सवाब और बुरों को उनके बुराई का जो है वो इकाब है या सजा है उसका जिक्र किया है। तो फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनके अमाल जो हैं वो क्या हुआ, उनके अमाल को अदल्ला, उनके अमाल जाया कर दिए, उनके अमाल बर्बाद कर दिए। अदल्ला अमाल हूं, गोया कि उनके अमाल थे तो सही लेकिन उनको जाया कर दिया गया। तो इस आयत से ये पता चलता है कि कुछ ऐसे अमल हैं जिससे नेकियां भी जाया हो जाती हैं। काफिर हैं, और काफिर क्या करते थे, काफिर जो है अहले मक्का अहले कुरैश, उनका इखलाक बड़ा मशहूर था, मकार में इखलाक, सिला रहमी, कुफर के अंदर भी सिला रहमी उनकी बड़ी उरूज पर थी, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक, इसी तरह कैदियों को आजाद करना, इसी तरह मेहमान नवाजी करना, खाना काबा के वो मुतवल्ली थे और हुजाज की खिदमत करते थे, पानी पिलाते थे, है ना। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका इतना अच्छा इखलाक, इतने मेहमान नवाज, इतनी नेकियां करने वाले, लेकिन इनकी नेकियों का आखिरत में कोई बदला नहीं मिलेगा। और क्यों बदला नहीं मिलेगा, कि ईमान के बगैर अमाल पर अजर और सवाब मुरतब नहीं होता। तो कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से नेकियां भी जाया हो जाती हैं, और उनमें अहम बात क्या है कि लोगों का कुफ्र करना। तो और उनका कुफ्र जो है उसकी शिद्दत क्या थी, वह सद्दू, खुद रुके और दूसरों को रोका, खुद एराज किया और दूसरों को भी इस तरफ आने नहीं देते थे। और जो मुसलमान ईमान लाते थे उनको दुख और तकलीफें देते थे, खुफिया तदबीरें, साजिशें, उनको नेकी के रास्ते पर चलने के लिए तरह तरह के रोड़े अटकाते थे, तरह तरह से उनको तकलीफें देते थे। तो आप याद रखिएगा, ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में खास तौर पर और पूरे अरब में मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था, उन पर जिंदगी तंग कर दी गई। और जब मुसलमान मदीना की जब स्टेट उनको मिली तो वहां पे उनको जब दारुल ईमान नसीब हुआ, उसमें वो जमा होने शुरू हुए, तो अब कुफारे कुरैश ने वहां भी मुसलमानों को चैन से बैठने ना दिया। अब आप देखें कि मुसलमान जब मदीना में आए, ये सहूलत तो थी कि अब वो आजादाना इबादत कर सकते हैं, बाकी क्या था कि मुश्किलात और मसाइल में वो छोटी सी बस्ती हर तरफ से घिरी हुई थी, चार चार सू, चार सू कैसे, मुआशी तौर पर। आप सोचें कि पूरे मुहाजरीन जो हैं अपने भरे हुए घरों को छोड़कर, अपनी तिजारत को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर मदीना वालों पर आ गए हैं, है ना, अंसार और मुहाजरीन। तो एक अंसार जो थे अब उन्हीं पर मुहाजरीन पर आए आगे हैं, फिर आप देखें उन्हीं के घरों में उनको मुआखात कायम कर दी गई, आबादकारी का मसला, वाशी मसला, आबादकारी का मसला। फिर तीसरा क्या था कि वो छोटी सी बस्ती, पूरा हर तरफ से कुफर जो है वो उसकी वो जद में है। मदीना में यहूदी हैं, गो के आपने उनसे जाकर मुआहदा कर लिया था यहूदियों से, लेकिन दिफाई समझौता करने के बावजूद भी मदीना वालों की हमदर्दियां काफरों के साथ थी, क्योंकि ये कौम कैसी है, जैसे कि बड़ी ही अहद शिकन, है ना। और ये खतरनाक ज्यादा थे कि राज तदबीरें, इससे वो अहले मक्का को बाखबर रखते थे। फिर ये वाली बात, अच्छा और इसके अलावा मसाइल क्या थे कि अब काफिर ये चाहते थे कि इस छोटी सी बस्ती की ईंट से ईंट बजा दी जाए, बड़े मसाइल थे। तो अब जो है आप सोचें, कि मुसलमानों के लिए जो मसाइल थे, तो मुसलमानों के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता क्या था कि मुश्किलात से घबराकर कुफर के आगे घुटने टेक दें, और दूसरा रास्ता ये था कि सर धड़ की बाजी लगाकर कुफर के मुकाबले में डट जाएं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने क्या बात बताई कि काफिर जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, इनके तमाम आमाल जाया कर दिए। अदल्ला, ये नहीं कहा कि दल्ला, अदल्ला जाया कर दिए गए। वो तो समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अदल्ला, अल्लाह ने उनके अमाल जाया कर दिए। अब दूसरी तरफ अहले ईमान से कहा जा रहा है, वल्लज़ीन आमनू वामिलु स्वालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अमले स्वाले करते रहे और कर रहे हैं। ईमान और अमले स्वाले करने वाले जो हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है, वह आमनू, और ईमान लाओ, बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, जो कुछ नाजिल किया गया मोहम्मद पर, इस पर ईमान ले आओ। अब आप देखिए कि वल्लज़ीन आमनू, ये जो ईमान है ये अमूमी जिक्र है। इस अमूमी जिक्र में अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूल पर ईमान, कयामत पर ईमान, किताबों पर ईमान और तकदीर पर ईमान, पूरा ईमान जो है वो मुराद है ना। तो अमूमी जिक्र करने के बाद अब खुसूसी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा जा रहा है। वह आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, ईमान लाओ जो कुछ नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो वही मतलू और गैर मतलू, कुरान और हदीस, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाओ। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ऐ मुसलमानों, अब तुम्हारा किरदार और तुम्हारा मामला कैसा होना चाहिए कि आप जो है मुकम्मल ईमान लाओ, बेहतरीन ईमान लाओ। वहुवल हक मिन रब्बिहिम, और साथ ही कहा जा रहा है कि और वो है सरासर हक उनके रब की तरफ से, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान जब ईमान लाएंगे तो मुसलमानों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और कुरान पर ईमान लाना और उसके साथ अल्लाह पर ईमान लाना और कयामत पर ईमान लाना, गोया के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, सब चीजों पर ईमान लाना है। क्यों? आप ही दावत देते थे ना तौहीद की, कयामत की, और इसके अलावा फरिश्तों पर ईमान लाने की, क्योंकि कुरान को आपने पेश किया। तो आप क्या थे? आप प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, कुरान तो एक थ्योरी था। तो कहा जा रहा है कि अहले मक्का रसूल पर ईमान नहीं लाए, उन्होंने कुरान पर ईमान नहीं वो लाए। कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, मकारमे अखलाक है उनके पास, लेकिन मकारमे अखलाक के बावजूद उनका ईमान ना लाना, अल्लाह ने उनके अमाल जाया कर दिए। तो ऐ मुसलमानों, ईमान और अमले सवाले लाजिम मलजूम है। और फिर खास तौर पर कहा जा रहा है कि जो कुछ नाजिल किया गया, जो कुछ कुरान की शक्ल में रसूल अल्लाह पर उतरा है, उस पर आप ईमान लाएं, और ये हक है इनके रब की तरफ से। तो बात क्या बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह पर जो कुछ भी नाजिल किया है वो अमरे हक है, इसको मानना जरूरी है। अब आप देखें, आप जरा लम्हे भर को सोचे तो सही कि रबीउल अव्वल का महीना, और उसमें जो है नाते पढ़ना ही जिंदगी का मकसद समझ लिया। हालांकि नाते पढ़ना मना नहीं है ना, अच्छी नाते जो शिरकिया ना हो वो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हरम भी जाते हैं ना तो कहते हैं काली कमली वाले ने बुलाया है, मदीना वाले ने बुलाया है, ये नहीं कहते अल्लाह ने बुलाया है। और वो हदीस जो है वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें है कि वो 40 नमाजें मदीने मस्जिद नबी में पूरी की जाएं। हरम में जाकर मदीना में जाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, और वहां पे बहुत सी नमाजों का पढ़ना। अब आप देखें कि हज और उमरा मदीना जाए बगैर भी मुकम्मल हो सकता है, ज़ियारत की नीयत करके हम मदीना जा सकते हैं। तो असल बात क्या है कि वहुअल हक मिन रब्बिहिम, के वो हक है इसके रब की तरफ से। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में जो उतरा, और आपकी सीरत और उसवा जो है वो हक है, तो फिर करना क्या चाहिए? कि यही दलील काफी है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ से आए हैं, और जो किताब आप पर उतरी वो अल्लाह की तरफ से है। तो रसूल अल्लाह की जिंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बनाना चाहिए। लेकिन हम में से कितने हैं जो हम रसूल अल्लाह के उसवा पर चलते हैं। और आपका उसवा क्या था? बादशाही में फकीरी की, फक्रो फाका, दो दो महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। आप सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। आपकी सबसे बड़ी सुन्नत क्या थी? इंसान हदायत पा जाए। हम तो अपने आप को नहीं संवारते तो दूसरों की फिक्र कैसे करें? और फिर ये बहाना भी काफी है कि असल में अभी तो अच्छी तरह बात करना नहीं आता। फरमाया कफरा अनहुम से ये आते हिम, तो जो सही ईमान लाएगा ईमान और अमले सवाले के साथ, उसके समरात क्या हैं कि अल्लाह उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देगा। एक एक होता है कफारा, एक होता है कफारा। तो कफारा के मानी क्या है कि अल्लाह ताला उनकी बुराइयां उनसे हटा देगा। अन भी साथ आ गया ना, मिटा देना, हटा देना, छुपा देना। सैयत जो है उसकी जमा है सैयात, तो अल्लाह उनकी बुराइयां उनसे हटा देगा। तो अहले मक्का का हाल क्या था? उनके अंदर मकारमे अखलाक भी बहुत अच्छे थे, बुराइयां भी बड़ी ही खराब थी। बड़ी शदीद कभी घनौना किरदार था उनका। शराब के वो रसिया थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, मुर्दार वो खाते थे, कत्लो गारत डाका जनी लूट मचा रखी थी, हलाल हराम की तमीज नहीं थी, शिर्क वो करते थे और जिना करते थे, सूद वो खाते थे, गालियां वो देते थे और दुनिया के लिए जीते थे। तो बहुत सी बुराइयां आप तसव्वुर करें। तो सहाबा जो थे इस्लाम कबूल करने से पहले उनकी जिंदगियां क्या थी? बड़ी जहालत की जिंदगी थी। लेकिन ईमान लाए तो कैसा ईमान? कफ्फरा अनहुम सय्यिआतिहिम, कि अल्लाह उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देगा। वह असलाह बालहुम, और उनके बाल की इसलाह कर देगा। बाल जो है इसके मानी क्या है? बालहुम जो है इसका रूट तो है बा वौला, और इसके मानी है कहते हैं अमराहुम, शानहुम, हालहुम, सबके मानी एक ही हैं कि अल्लाह इनको मासी से बचा कर रुश्द और खैर की राह पर लगा देगा। और मोमिन की इस्लाह हाल की यही सबसे बेहतर सूरत है कि उसको गुमराही से निकाल कर रुश्द और खैर के रास्ते पर लगा दिया जाए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मालो दौलत के जरिए ही हाल दुरुस्त किया जाएगा, बल्कि हर मोमिन को माल मिलता भी है और फिर नहीं भी मिलता। तो सिर्फ जाहिरी हालात का दुरुस्त करना नहीं है, बल्कि जाहिरी के साथ साथ बातिन का, उनके दीन का, उनके अकीदे का। तो जाहिर और बातिन उनको भी दुरुस्त करेगा और उसके साथ दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी, है ना। और ये जो बाल लफ्ज है ना, इसका तस्निया है ना इसकी जमा है, और ये लफ्ज जो है ये ऐसे ही आता है बाल। और आप अगर आपको याद हो आप ये लफ्ज का इस्तेमाल करती हैं, बाल बच्चे तो आप उर्दू में कहती हैं, उसमें यही है कि अरबी में से ये लफ्ज आ गया कि हाल कैसा है, है ना। और याद है आपको, मैं कल बहुत सोचती रही कि ये लफ्ज हम पढ़ते हैं, वो दुआ है जब छींक आती है शाबाश तो क्या करते हैं? जिसको छींक आती है वो क्या कहता है? सब मिलकर बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो छींक को सुनता है वो क्या कहता है? यरहमुकुमुल्लाह, है ना। तो ज्यादा के लिए हो तो कुमुल्ला कहेंगे, और अगर एक को कहेंगे तो यरहमुकुल्ला, मर्द के लिए कल्ला और औरत के लिए किल्ला। अच्छा, अब आपने दुआ दे दी, अब छींक सुनने वाला क्या कहता है? यादी कुमुल्लाहु व युसलेहु बालकुम, है ना। तो यादी कुमुल्लाहु व युसलेह बालकुम, तो मानी क्या है कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारे हाल को दुरुस्त कर दे, जाहिरी भी और बातिन भी। फिर इसके बाद जो है आयत नंबर 3 में कहा जालिका, ये इसलिए भी अन्नल्लज़ीन कफरुत्तबउल बातिला, ये सब किस लिए है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि कुफर करने वालों ने बातिल की पैरवी की। जालिका ये क्या? अदल्ला अमालहुम, उनके अमाल तो हो जाएंगे जाया इसलिए कि उन्होंने कुफर का इत्तबा किया, बातिल का इत्तबा किया। वह अन्नल्लज़ीन, और ये के वो लोग आमनू जो ईमान लाए, उन्होंने क्या किया? इत्तबाउल हक का मिन रब्बिहिम, उन्होंने इत्तबा किया हक का अपने रब की तरफ से। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम, इसी तरह अल्लाह मिसाल देता है लोगों के लिए। यद्रिबुल्लाहु लिन्नासि, लोगों के लिए अल्लाह देता है अम्सालहुम, उनकी मिसालें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बता देता है। तो मानी ये हैं, ये जो लफ्ज है ना कजाली का यद्रिबुल्लाहु लिन्नासी अम्सालहुम, इसका एक तर्जमा तो ये है कि अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बता देता है। दूसरा तर्जमा क्या है, इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए इनकी मिसालें देता है। तो फरीकैन की पोजीशन को अल्लाह ताला वाजे करके रख देता है। फरीक कौन थे, एक ईमान लाने वाले और दूसरा कुफर करने वाले, और उनकी पोजीशन ठीक ठीक बता दी कि धोखा ना खाना, कुफर करने वालों के अमाल जाया हैं, ईमान और अमले सवाले इख्तियार करने वालों के अमाल का क्या हाल है, बुराइयां अल्लाह मिटा देगा और उनके हालात अल्लाह ठीक कर देगा। और अल्लाह उनके हालात कैसे ठीक करेगा कि वो ईमान लाए हैं, अमले सवाले कर रहे हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला उनकी पिछली हालत को बदल कर उनको सही रास्ते पर चलाएगा, जिंदगी दुरुस्त कर देगा। नंबर दो, वो जो कमजोरी और बेबसी और मजलूमी की हालत में है अल्लाह ताला उससे उनको निकाल देगा। जैसे कि मदीना में फिर देखें कि इस्लाम कैसे फैला, हत्ता के फिर फतह मक्का का दिन भी आया, हत्ता के इर्द गिर्द के इलाके कैसर किसरा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के कदमों के नीचे आ गए। तो जुल्म सहने के बजाय वो जालिमों का मुकाबला करने लगेंगे, वो महकूम नहीं रहेंगे, वो हाकिम बन जाएंगे, वो मगलूब नहीं रहेंगे, वो गालिब हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह हालात को दुरुस्त कर देगा। तो ये है पोजीशन जो यहां पे बताई जा रही है, कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु लिन्नासी अम्सालहुम। फिर इसके बाद आप देखिए आयत नंबर 4 से लेकर 11 तक अहले ईमान की हौसला अफजाई की जा रही है और अहले ईमान से कहा जा रहा है कि अगर काफिर जो हैं वो आपसे मुठ भीड़ करें, अगर वो तुम्हें तंग करने लगें, अगर वो लड़ाई करने लगें, तो अब जो है ना इनका मुकाबला करना। आप देख लें कि यहां से अब मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि अब जो है तुमने भी जो है ना वो कुव्वत का जवाब कुव्वत से देना है। मक्की दौर में क्या कहा गया, पूरा मक्की दौर सबर, अपने इखलाक और किरदार जो है ना उसको मजबूत करो, अकायद मजबूत करो। पूरा मक्की दौर में अकायद की मजबूती है, बुनियादें मजबूत की जा रही हैं, सीरत और किरदार की उठान की जा रही है। और अब मदनी दौर आया है और मदनी दौर में आते ही उनसे कहा जा रहा है, क्या कहा, फाइजा लकी तुमुल्लजीना, के पस जब तुम्हारी मुलाकात हो उन लोगों से, किन से, अल्लाजीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया। तो काफिरों से जब मुलाकात हो, लकीब जो है यहां पे आम मुलाकात नहीं है, जब मुकाबला हो, जब तुम्हारी उनसे मुठ भीड़ हो, लड़ाई हो, तो क्या करना, नंबर वन फदरबर रिकाब, तो मारना है गर्दनों का। अब ये नहीं कहा जा रहा कि हाथों पे मार देना, पांव पे मार देना, फिर क्या कहा जा रहा है कि अब पहला काम ये है कि मारना गर्दनों को। तो अब जो है वो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं कि फिर गर्दनों पर वार करना। अब कत्ल करने की बजाय गर्दने मारने का जो हुक्म दिया जा रहा है, तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि कुफार के साथ गिलजत और शिद्दत का इजहार है कि बड़ा सताया इन्होंने तुम्हें, बड़ा तंग किया है, बड़े जुल्मों से तंग किए हैं। मक्की दौर एक दिन, दो दिन, चंद महीनों और चंद सालों की बात नहीं है, पूरी मुद्दत है कि इन्होंने तुम्हें सताया है। और फिर आप देख लें कि फौरन ही फिर गजवाए बदर होती है, तो अब मदीना में रहकर भी जीने नहीं दे रहे, मुसलमान थोड़ी गए हैं मदीना से मक्का में, बल्कि मक्का से वो उठकर आए। तो फशुद्दुल वसाक, आगे मतलब आप देखेंगे जैसे यहां पे कहा जा रहा है ना फदरबर रिकाब, तो फशुद्दुल वसाक असखन तुमहुम, तो बड़े सख्त अल्फाज का अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। फिर हम देखते हैं कि पहली बात फदरबर रिकाब कह के क्या कहा, हत्ता जब इजा असखन तुमहुम, के जब तुम उनको जो है खूब कत्ल कर चुको, फशुद्दुल वसाक, तो फिर मजबूत बांध लेना बंधन, तो फिर उन्हें कैद कर लेना। तो अब जो है जब लड़ाई जो है वो हो रही है, गर्दने मार दी हैं, फिर जब अच्छी तरह उनको कुचल चुको, असखन तुमहुम, अच्छी तरह कुचल चुको, कुचल चुको, असखन तुमहुम का रूट है सा खानून, और जैसे मारने के लिए चार लफ्ज आते हैं ना, तो ये चौथा है। और सखन कहते हैं किसी चीज को उठाकर उसका वजन का अंदाजा करना। मसलन आप बाजार जाती हैं कोई चीज खरीदने, आपको कीमत देख लेती हैं इतनी है, आपको देखने से पता चल रहा होता है कि ये ऐसी चीज है, लेकिन फिर आप मजीद उसको उठाकर ठोक बजा कर उसका अंदाजा करती हैं। इस तरह ये लफ्ज जो है मोटा मोटे के लिए भी आता है, शिद्दत के लिए भी, क्योंकि किसी चीज को उठाकर भी देखना, जाहिरी तौर पर भी, बातिन भी, उसका हर तरह से उसका उसका अंदाजा करना। तो असखना के मानी होते हैं खून रेजी में हद से बढ़ना, कत्ल के दौरान सख्ती का तस्वुर और बेदरेक कत्ल इसमें पाया जाता है। असखन तो मुहम, जब खूब जो है मार चुको, जब खूब खून बहा चुको, फशुद्दुल वसाक, तो फिर गर्दनों का बांधना है, फिर उनको कैदी बनाना है। और आपको पता है ये है कि फशुद्दु, शुद्दु के मानी क्या है? हाँ, शीन दाल दाल, मजबूती के लिए लफ्ज आता है। तो फिर उनको बांधना है ना, कैसे बांधना? वसाक। और वसाक जो है इसके मानी क्या है? हाँ, वो अहद जो मजबूत बांध लिया गया हो। आप पहले ये पढ़ चुकी हैं है ना, मिसाक, जैसे मिसाके लखनऊ, मिसाके मदीना, ये अल्फाज आपको बताए थे। तो वसाक बंधन को कहते हैं, और ये इस्म है, बंधन, बंदिश, और मानी फिर इसके क्या है? तो फिर मजबूती से इनको कैद करना। अच्छा, फिर आप देखिए कि इसके बाद तीसरी बात बताई जा रही है, फइम्मा मन्नम बादु, फिर इसके बाद जो है वो क्या है? फइम्मा, फिर या तो मन्नन एहसान करना, बादु इसके बाद, कि कैदी बना लिया है, फिर इसके बाद जो है इन पर या तो एहसान करना, यानी तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो एहसान कर लो, फिर या क्या करो? वह इम्मा फिदान, चौथी बात, या फिर फिदिये का मामला कर लो। हत्ता तदाल हरबू, यहां तक के रख दे जंग, औजारहा अपने औजार, यहां तक के लड़ाई अपने हथियार डाल दे, लड़ाई खत्म हो जाए। तो औजारहा वजर से है, और वजरतुन इसका वाहिद है औजार का, तो यहां तक के लड़ाई जो है फिर खत्म हो जाए। तो अगर आप गौर करेंगी तो आप देखेंगी कि यहां पर मुसलमानों को जो है वो चार बातें कही जा रही हैं। और कैसे कि जब मुसलमानों की काफिरों से लड़ाई हो तो उस वक्त क्या करें? नंबर वन, के पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि उनको जो है वो उनकी कमर को तोड़ना है, उनकी जो कुव्वत है ना उसको खत्म करना है। असल हदफ क्या है? दुश्मन की जंगी ताकत और कुफर की कमर तोड़ देना, फदरबर रिकाब, उनको मारना है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, लोगो दुश्मन से भिड़ने की आरजू मत करो और अल्लाह से आफियत मांगो, लेकिन अगर भिड़ जाओ तो फिर साबित कदम रहो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। ये बुखारी की रवायत है। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम जो है वो मुसलमान जंगजू हैं और इस्लाम जंग की ही प्लानिंग देता है। इस्लाम तो यही चाहता है कि बच बचा कर रहा जाए, जैसे कि मक्की दौर में मुसलमान रहे, लेकिन अगर दुश्मन छोड़े ही ना, कोई शक्ल ना बने और मुकाबले की सूरत ही पेश आ जाए, तो फिर जो है फिर खूब जो है वो असल हदफ ये होना चाहिए कि दुश्मन की जंगी ताकत को तोड़ दे दे। और ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जंगी ताकत को तोड़ने की बजाय दुश्मन के आदमियों को गिरफ्तार किया जाए, या माल गनीमत जमा किया जाए, या माल मता जो है उसको जमा कर लिया जाए, ये मकसद नहीं होना चाहिए। और फिर आप जो है वो दूसरी बात, हत्ता इजा असखन तो मुहम फशुद्दुल वसाक, और जब उनको खूब जो है वो मार चुको, जब तुम जो है खूब उनको जो है मार चुके हो, खूब उनका कटाव कर चुके हो, तो आप क्या करो कि खूब मजबूत कैदो बंद से उनको गिरफ्तार कर लो। इसके माने ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा कत्ल करने के बाद कि जो भी उनके सरदार हैं, बड़े बड़े जो सरगना हैं, उनको मार दिया है और वो लोग आपके काबू में आ गए हैं, अब के उन्हें कैदी बना लें। और कैदी भी जब बनाओ तो कैसे मजबूती से उन्हें जकड़ कर रखो ताकि वो भाग ना सके, ऐसा ना हो कि बस वो छूट कर चले गए और कल फिर आज गए और कल फिर उठकर तैयार हो जाएं और फिर लड़ाई करने लगे, फिर जंग की नौबत आ जाए। तो रोज रोज का ये तमाशा नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि गजवाए बदर के जो लोग बच गए थे, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे, और जख्म जहर उनको भी लगे थे। तो अब जो है वो रसूल अल्लाह के घर के पास ही थे जहां कैदियों को रखा हुआ था ना, उनको बांधा हुआ था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने घर में सोए हुए नहीं थे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह न आपके घर के बाहर पहरा दे रहे थे, क्योंकि हालात बड़े ही हंगामी हालात थे। तो आप जो थे आप परेशान थे, पहलू बदल रहे थे, करवट ले रहे थे, और आप भी जैसे जो है ना जैसे मुख्तलिफ आवाज निकाल रहे थे, थके हुए भी थे लेकिन जख्मी भी थे, जरा इतनी बड़ी जंग हुई थी। तो जब आप सो नहीं रहे थे तो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह के बारे में आता है गालिबन यही थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों नहीं सो रहे ना। तो आपने फरमाया कि पास के कैदियों में से मेरे चचा के कराहने की आवाज जो है ना मुझे सोने नहीं दे रही, कि चचा थे और करा रहे थे। अच्छा अब क्या हुआ, बस आपने ये बताया कि वो मतलब चचा हैं करा रहे हैं और मुझे नींद नहीं आती आ रही, और कई बातें आप सोच रहे होंगे। इतने में क्या हुआ कि उनके कराहने की आवाज बंद हो गई। अब आपने उनको पूछा पहरेदार को कि क्या हुआ कि अपने ये अपने चचा के कराहने की आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि असल में मैंने उनके बंधन ढीले कर दिए हैं ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो सबके बंधन ढीले कर दो या मेरे चचा के बंधन भी जो है ना उसी तरह कस दो जैसे कि बाकियों के कसे हुए हैं। मुझे ये वाकया बड़ा मुतासिर करता है ना कि एक तरफ आपके अंदर सिला रहमी का ये हाल है कि आप परेशान हैं और नींद नहीं आ रही, और दूसरी तरफ अब आपको तो सुकून से सो जाना चाहिए था, बाकी कैदी करा भी रहे हैं वो तो काफिर हैं, आपके चचा के बंधन तो ढीले कर दिए गए, अब फिर परेशान हुए कि वो भी वो कराने की आवाज क्यों नहीं आ रही। और जब पता चला कि उनका बंधन ढीला कर दिया गया खास तौर पर आपके चचा का, तो कहा कि नहीं या तो सबके बंधन ढीले कर दो सब कैदियों के, या फिर मेरे चचा के, और फिर सबके बंधन जरा ढीले कर दिए गए। तो क्या बात पता चलती है, आप कितने अदल करने वाले थे, कितने अल्लाह से डरने वाले थे इस हाल में भी। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि उनको मजबूती से मारना। फिर तीसरी बात यह है कि उन पर एहसान किया जाए। अब एहसान जो है इससे क्या मुराद है कि उन पर जो है वो एहसान किया जाए, तो याद रखिएगा कि कैदियों पर एहसान करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं। और वो क्या शक्लें हैं कि कैद में उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। दूसरी शक्ल ये है कि उनको कत्ल ना किया जाए या हमेशा की कैद उनको ना दी जाए। ये भी हो सकता है कि उनको जो है वो गुलाम बनाकर मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाए। और तीसरी एक शक्ल ये भी है कि उनको जिजिया लगाकर जिमी बना लिया जाए। और चौथी शक्ल ये है कि उनको बिला मुआवजा रिहा कर दिया जाए। और आप एक बात याद रखिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बदर के कैदियों के मुतल्लिक जो है वो कैसा किरदार अदा किया, कैसा किरदार अदा किया, बेहतरीन किस्म का जो है वो उनके साथ जो है वो हुस्ने सुलूक किया और एहसान के दर्जे का उनके साथ जो है वो मामला किया गया। कैसे पता चलता है कि एहसान के दर्जे का उनके साथ जो है वो मामला किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवाए बदर के कैदियों को मुख्तलिफ सहाबा के घरों में बांट दिया और हदायत की इन कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना, इन कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। उनमें से एक कैदी अबू अजीज का बयान है कि मुझे जिन अंसारियों के घर में रखा गया था वो सुबह शाम मुझको रोटी खिलाते थे और खुद सिर्फ खजूरें खाकर रह जाते थे। आपको पता है कि वहां पे गंदम नहीं पैदा होती, खजूरें उनकी खुराक है ना, तो गंदम तो कहीं बाहर से आ रही है और किसी को रोटी का मिल जाना बड़ी बात है, और वो भी मदीना में। अभी जो है वो मुहाजिर और अंसार में मुआखात है और माश का मसला है, तो कहते हैं कि खुद तो घर वाले खजूरें खाकर रह जाते और हमें रोटी देते। इसी तरह एक और कैदी सुहैल बिन अमर कहते कि हुजूर से कहा गया कि ये बड़ा आतिश बयान मुकर्रर है, जबरदस्त तकरीरें, और आपके खिलाफ ये तकरीरें करता रहा, इसके दांत तोड़वा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मैं इसके दान तोड़वा दूं तो अल्लाह मेरे दान तोड़ देगा अगर कि मैं नबी हूं। ये सीरत इब्ने हिशाम में है। फिर इसी तरह आप और देखें कि यमामा के एक सरदार थे सुमामा बिन उसाल, ये भी आपके पास गिरफ्तार होकर आए। जब तक वो कैद में रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उमदा खाना और दूध इनके लिए मुहैया किया जाता रहा। उमदा खाना क्यों? इसलिए कि वो अपने कबीले के सरदार थे। जंगी कैदियों से बुरा सलूक नहीं किया। और उसामा, ये जो उसामा है या ये सुमामा कहते हैं, सा मीम अलिफ और मीम हा, सुमामा, सुमामा बिन उसाल जब गिरफ्तार होकर आए, इनसे पूछा गया, रसूलल्लाह ने इनसे पूछा, सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसका खून कुछ कीमत रखता है। सरदार का खून है ना, तो जाहिर है कि कौम के लोग फिर कुछ करेंगे। अगर मुझ पर एहसान करेंगे तो ऐसे शख्स पर एहसान करेंगे जो एहसान मानने वाला है, और अगर आप माल लेना चाहते हैं तो मांगिए, आपको दिया जाएगा। अब सरदार है ना, देखें बात का अंदाज। 3 दिन तक आप इनसे यही बात पूछते रहे और वो यही जवाब देते रहे। आखिर आपने हुक्म दिया सुमामा को छोड़ दिया जाए। रहाई पाते ही वो करीब के एक नखलिस्तान में गए, नहा धोकर वापस आए, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और कहा, आज से पहले कोई शख्स मेरे लिए आपसे और कोई दीन आपके दीन से बढ़कर मबगूज नहीं था, काबले नफरत ना था, मगर अब कोई शख्स और कोई दीन मुझे आपसे और आपके दीन से बढ़कर महबूब नहीं है। फिर वो उमरे के लिए मक्का गए और वहां कुरैश के लोगों को नोटिस दे दिया, आज के बाद कोई गल्ला तुम्हें यमामा से ना पहुंचेगा जब तक रसूलल्लाह से इजाजत ना ले लें, वो मुझे इजाजत ना दें। हत्ता के फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहां से गल्ला अजनास आती थी इनके पास, अहले मक्का के पास, मक्का वालों ने हुजूर से दरख्वास्त की तो कि यमामा से हमारे लिए गल्ला जो बंद हो गया है उसको जारी करवा दें। फिर इसी तरह जो है वो एहसान की और भी बहुत सी मिसालें हैं, आप उनको तलाश कर सकती हैं और ढूंढ सकती हैं। अच्छा, अब अगली बात क्या है? वह अम्मा फिदान, या फिर फिदिया लेकर छोड़ देना। अच्छा, फिदिया लेकर छोड़ना इसकी क्या शक्ल है? इसकी 3 शक्लें हैं। नंबर 1, माली मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाए। कि माली मुआवजा लिया और फिर उनको जो है वो छोड़ दिया, जैसे बदर के कैदियों से माली मुआवजा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लिया गया और उनको जो है वो छोड़ दिया गया। फी कैदी से 1,000 से 4,000 तक की रकम लेकर इनको रिहा कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे ना, तो आपकी बेटी ने क्या भेजा था? हार भेजा था। कौन सा हार? जो बीबी खदीजा ने उनको शादी के मौके पर दिया था, अपना हार। तो आपने जब उस हार को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल, एक शक्ल ये है। दूसरी क्या है? रिहाई की शर्त पर कोई खास खिदमत लेने के बाद छोड़ दिया जाए। और ये जो खिदमत थी ये क्या थी? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं था और वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो ये खिदमत मुकर्रर की गई कि हर कैदी मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। ठीक है, कोई खिदमत भी ली जा सकती है। तीसरी क्या है? अपने उन आदमियों से जो दुश्मन के कब्जे में हो उनका तबादला कर लिया जाए, है ना। तो गोया के फिर अपने कैदी जो हैं उनका तबादला करवा लिया जाए। तो हमें ये मिसालें भी मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैदी जो थे उनके कैदियों से जो है वो बदल लिए। तो कैसे? कि एक मर्तबा कबीले सकीफ के मुसलमानों के 2 आदमियों को कैद कर लिया गया और फिर कुछ मुद्दत बाद उनका एक आदमी मुसलमानों के पास कैदी हो गया। हुजूर ने इसको ताइफ भेजकर इसके बदले इन 2 मुसलमानों को रहा करा लिया। ये इमाम मुस्लिम की रवायत है ना। तो कैदियों के बदले जो है उनके अपने कैदी रहा करवाए जाएं और उनके कैदी भी रहा। जैसे बांग्लादेश जब बना तो आपस में हुकूमतों ने तबादला किया था कैदियों का। ये जो थे खुर्रम मुराद, ये भी बांग्लादेश की कैद में थे और कहते हैं कि मैंने काफी कुरान जो है शायद 10 पारे या कितना कुरान वहां ही मैंने हिफ्ज किया और फिर वो लोगों को दर्श देते थे। और कहते हैं कि वैसे उनको पता नहीं था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हूं यूं। और बहुत से जंगी कैदी उनके जंग में मतलब वहां पे कैद की वजह से उनका उन्होंने इस्लाम की तरफ आए। बहरहाल तो ये चार काम करने के बाद क्या कहा जा रहा है, यहां तक कि जंग अपने हथियार रख दे, खत्म हो जाए जालिक इसी तरह। तो फिर क्या है बात कि अल्लाह ताला जो है ये बता रहे हैं कि असल मकसद उनकी कुव्वत का खत्म करना है। फिर ये चार तुम्हारे पास काम है, ये है तुम्हारे करने के काम। और वलौ यशा अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, लन तसरा मिनहुम, तो इनसे खुद ही निमट लेता। ये जो है ना लन तसरा, ये बाबे इफ्तियाल से है। इसके माने क्या है? इसके माने ये नहीं है कि अल्लाह मदद करता, इंतकाम लेता, बदला। आपको पता है बाब में जब चीज चली जाती है एक बाब से दूसरे बाब में, तो ये अल्फाज की ज्याती, मानी की ज्याती पर दलालत करती है। अगर अल्लाह चाहता तो खुद भी इनसे इंतकाम ले सकता था। अल्लाह कैसे इंतकाम ले सकता है? आसमान से बिजली की कड़क भेजकर, जलजला भेजकर, जमीन से पानी का सैलाब भेजकर, जैसे कि पिछली कौमों को बर्बाद किया। फिर अल्लाह ने क्यों नहीं इनको खुद खत्म किया? वले कि यबलुआ बादकुम, ताकि वो आजमाइश में डाले तुम में से बास को, बेबादिन बास से, ताकि तुम लोगों को एक दूसरे से आजमाए। तो अगर अल्लाह ताला जो है खुद उनको खत्म नहीं करता, और मुसलमानों के जरिए, जंग के जरिए जो है दुश्मन को उसके कुफर का मजा चखाया जा रहा है, तो असल में इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज लोगों के जरिए उनकी आजमाइश करता है। कैसे? जैसे कि अहले मक्का की आजमाइश हुई, क्योंकि बाज नबी थे कि उन्होंने हिजरत कर ली, और वो नबी जो तादाद में थोड़े थे, अल्लाह ने कहा कि तुम चले जाओ, और पीछे से फिर आसमान या जमीन से अजाब आया, उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन वो पैगंबर जिसके साथ बहुत से लोग मिल गए, बहुत से लोगों ने उस पर इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके साथी बन गए, तो उनको जिहाद के लिए कहा गया। बनी इसराइल को भी देख लें, आजादी के बाद एक एक समंदर के अंदर सड़क तो बनाई गई, दुश्मन को गर्क कर दिया गया, लेकिन फिर उनको कहा गया कि अब तुम जिहाद करो, है ना, उनका इम्तहान लिया गया। तो असल में अल्लाह ताला जो है छोटी बड़ी मुख्तलिफ जंगों के जरिए कौमों का इम्तहान लिया करता है, ताकि पता चले कि वो अपने ईमान के दावे में सच्चे हैं या झूठे। तो बाज को बाज के जरिए अल्लाह ताला जो है वो आजमाते हैं, आजमाइश उनकी करते हैं, ताकि ये बात पता चल जाए कि ये अपने दावा ईमान में सच्चा है या अपने दावा ईमान में जो है वो झूठा है। तो एक तरफ होती है ईमान लाने वालों की आजमाइश, और दूसरी तरफ होती है कुफर करने वालों की भी आजमाइश, है ना। कुफर करने वालों की आजमाइश कैसे होती है? कि वो बातिल परस्त हैं तो वो कितने सच्चे हैं। तो दोनों किरदार खुलकर सामने आ जाए। और याद रखें कि मदीना में कहा जा रहा है, ये हुक्म दिया जा रहा है, मक्का में नहीं। और मदीना ही में मुनाफिकों का किरदार फिर सामने आता है, और अब्दुल्ला बिन उबई भी, और काफिर हमेशा छुप छुप कर रहते हैं, बच बच कर रहते हैं, मुंह से कहते हैं अमल नहीं करते। लेकिन ईमान लाने वालों की आजमाइश लाजिम है, वल्लजीना कुतिलु फी सबीलिल्लाह। और यहां पे खास तौर पर कहा जा रहा है कि वो लोग जो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में, अमालहुम, अल्लाह उनके अमाल जाया नहीं करेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कभी जाया नहीं करेगा, उनके अमाल जाया नहीं करेगा। कुफर करने वालों के अमाल जाया होंगे, पीछे आप पढ़ चुकी। क्या करेगा अल्लाह ताला? ये शहादत के जो है वो फिर मजीद उसकी जो है वो तफसील बताई जा रही है, क्योंकि मुनाफिकीन ये समझते थे कि अगर हम गए तो हम खत्म हो जाएंगे, हमें वो बड़ा डरते थे ना। तो जो मुनाफिक है ना, वो चाहते हैं कि उनको नकद इनाम मिले। तो यहाँ पे अल्लाह की राह में जो शहीद होने वाले हैं उनके मरातिब और दर्जात बयान किए जा रहे हैं। नंबर 1, फलयुदिल्लामालहुम। नंबर 2, सयादीहिम, कि अल्लाह ताला उनकी करीब रहनुमाई करेगा। रहनुमाई क्या है? कि उनको हदायत के रास्ते पर चलाएगा, कि दुनिया में भी रुश पर वो चलेंगे और आखिरत में भी जन्नत। वयुस्लिहु बालहुम, और उनकी हालत को दुरुस्त कर देगा, उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी। दुनिया कैसे संवरी? कि शहीद के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है ना। और आखिरत कैसे संवरी? कि फिर वो जन्नत के बागों में है। और फिर छठी आयत में क्या है, वह युद्ध खिलोहम, और उनको दाखिल करेगा अल जन्नता जन्नत में, अर्रफा लहुम, अर्रफा हा लहुम, उनको ऐसी जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा शहीदों को जिससे वो उनको वाकिफ करवा चुका है। अब आप देख लीजिए कि अब यहां पे बताया जा रहा है कि ये बशारत जो कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, और सारे यानी इस्लाम लाने वाले हर दौर के सब मुराद हैं, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि तमाम वो लोग, क्योंकि वल्लज़ीना कुतलू, कोई भी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है तो अल्लाह उनको ऐसी जन्नत में दाखिल कर देगा, अर्रफाहा लहुम, जिससे इनको वाकिफ करवाया जा चुका है। ये जो अर्रफाहा जो है ना, इसके तीन मानी हैं। एक मानी तो ये है कि वो जन्नत पहले ही इसका तारुफ करवाया जा चुका है, और दूसरे इसके मानी क्या हैं, तारुफ कैसे करवाया, कुरान और सुन्नत, बहुत सी कुरान की आयतें और बहुत सी अहदीस, उससे पता चलता है जन्नत कैसी है। दूसरे इसके मानी ये हैं कि हर जन्नती जन्नत में अपने मकान और रहने की जगह को पहचानता होगा, जैसे बुखारी की रवायत है कि जन्नती अपने मकानों और रिहायश गाहों को इससे ज्यादा पहचानते होंगे जितना वो दुनिया में अपने घरों को पहचानते हैं। दुनिया में क्या होता है कि मसलन आप जैसे हम कन्वेंशन में जाते थे ना, बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है इकना में भी और यहां पे भी, इशना इकना के जो मुस्लिम कम्युनिटी के कन्वेंशन होते हैं वक्तन फक्तन, उसमें आप जाते हैं, और फिर क्या होता था कि दूर गए हैं, जैसे फिलाडेल्फिया गए हैं या शिकागो है या फिर पिट्सबर्ग में, मुख्तलिफ जगह कन्वेंशन होता है। तो अब जब वो कन्वेंशन होता था तो बहुत से लोग बहुत से होटल जो है बुक करवा लेते हैं, और जब वो बुक करवाते हैं तो ये बड़े बड़े ये 5 स्टार और 7 स्टार होटल, यहाँ पे सब मुसलमान ही नजर आते हैं दूर दूर से सफर करके। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक जैसे ही कमरे लगते हैं, आप अपने की बजाय किसी दूसरे के कमरे में जाकर चाबी घुमाने लगते हैं, एक ही जैसे मिले मिले पता नहीं चलता कि ये मेरा कमरा है या ये मेरा घर है ना। तो इंसान को क्या होता है, शक सा पड़ जाता है। और वैसे भी मसलन आप देखें कि आप मेहमान बनकर कहीं नई जगह पे जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर जो है हमें ये बात नहीं पता चलती कि जैसे घर बड़ा अजनबी लगता है, अपना नहीं लगता, तो यहाँ पे यह है कि जन्नती अपने घर को, अपने रहने की जगह को पहचानता होगा, ये है बात। तीसरी बात है अरफा जो है, ये अरफा को होता है पहचानना, और यहाँ पे अर्रफा तो पहचान कराना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह कहते हैं कि अर्रफा यहाँ पे तय्यबा के मानी में है, तय्यबा, तय्यबा हा लहुम, और तय्यब जो है ये खुशबू के मानी में इस्तेमाल होता है। मानी ये है अर्रफा के उनके घर जो हैं वो खुशबू से मुअत्तर होंगे, खुशबुएं होंगी हर तरफ, खुशबू छोड़ी भी होगी। आप देखिए मेहमानों के आने से पहले आप क्या करती हैं, एयर फ्रेशनर करती हैं ना, बखूर, अरबों में बखूर का बहुत रवाज है। हमें बहरीन में काफी साल रहने का इत्तफाक हुआ, सऊदीया में भी रहने का, शादी से पहले सऊदीया में अब्बा जान रहते थे तो उनके साथ, शादी के बाद बहरीन में, तो अक्सर पड़ोसी जो थे ना बखूर लगा देते थे, और खास तौर पर जुमेरात, जुमेरात उनकी जैसे बहरीन में मैं देखती थी बेटियों के लिए मुकर्रर है, बेटियों के आने से पहले जैसे हम बाहर से गए कहीं आए तो जैसे अपने घर के बाहर भी बखूर लगा देते थे, और इतनी अच्छी उसकी मुझे तो खुशबू लगती थी, तरह तरह का बखूर मिलता है और उसकी फिर खुशबू। तो और रूटीन में भी, और मेहमान में खास तौर पर हमारे यहाँ खाने का एहतमाम हम करते हैं ना, लेकिन वो खुशबू जरूर लगाते हैं और फिर आपके ऊपर भी डालते हैं, तो बहरहाल खुशबू जो है वो हर तरफ बखेर दी जाएगी लहम उनके लिए। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है या यो अल्लाजीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, इन तंसुरु के मानी क्या है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह की मदद करना, अल्लाह के दीन की मदद करना, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो युसब्बित अकदामकुम, और तुम्हें साबित कदम रखेगा। इसके मानी क्या है कि अल्लाह की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। यहां पे मुसलमानों की हौसला अफजाई की जा रही है, तुम्हारा काम है अल्लाह के दीन की नुसरत की खातिर उठ खड़ा होना, अजम और हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला करना, आगे काम संभालना अल्लाह का है, मदद करना अल्लाह का काम है कि वो तुम्हारे कदम इस तरह जुमाएगा कि कि कोई उखेड़ नहीं सकता। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी मुझे पसंद है ये आयत। तुम्हारा काम है पहला कदम उठाना, फिर तुम्हारे कदमों को बढ़ाते चले जाना, ये अल्लाह का काम है। तुम्हारा काम है चलना, फिर तुम्हें दौड़ाना अल्लाह का काम है। अगर दुश्मन बदर के मैदान में आ गया है, पड़ाव डाल दिए, तो तुम्हारा काम भी अब उसके मुकाबले के लिए आओ, घरों में छुपकर मत बैठ रहो। जब तुम उसके मुकाबले के लिए आ जाओगे, फिर अल्लाह फरिश्ते नाजिल करेगा। तो असल में हम मुसलमानों की हालत क्या है, मेरे ही और आपका हाल क्या है, हम क्या चाहते हैं? पहले मदद आए, फिर हम काम करेंगे। पहले यकीन हो जाए कि क्या 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 समरात मिलने वाले, और मिलने शुरू हो जाए, फिर हम अमल करेंगे। और अल्लाह की सुन्नत क्या है? पहले कदम उठाओ, फिर मेरी मदद आएगी। ये है फर्क मेरे और आपके चाहने में और सहाबा के चाहने में। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार अब भी। तो हमारा काम है कोशिश करना और कश्ती को समंदर में डाल देना, ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे डाल दी, यानी ना खुदा से लेके कश्ती जब खुदा पे छोड़ दी, खुद ही मौजे ले चली कश्ती को साहिल की तरफ। तो तवक्कुल करना का काम है, जो कर सकते हैं करके अल्लाह पे तवक्कुल कर दिया जाए। हमारा काम है कि नहीं, जो है हम सूद को छोड़ नहीं सकते, हम बैंक से पैसा निकलवा नहीं सकते, हम बैंक का सूदी कारोबार खत्म नहीं कर सकते, तिजारत हराम की खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि जरिया ही कोई हलाल का नहीं है। जब हराम की कमाई का जरिया छोड़ोगे, बैंक की जॉब है, सूद का कारोबार है, कोई रिश्वत है, कोई डाका है, कोई चोरी है, छोड़ोगे तो कोई सीधी रास्ते निकलेंगे ना। तो ये है असल बात कि अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा। वल्लज़ीना कफरू, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फतासल्लहुम, तो उनके लिए तास है। तास क्या है? ता ऐन सीन, ये लफ्ज लानत और फटकार के लिए इस्तेमाल होता है। मानी इसके क्या है? गिरना गिराना। ता ऐन सीन, ठोकर खाकर गिरना और फिर उठ ना सकना, पस्ती में गिरकर किसी चीज का टूट जाना। जैसे कभी इंसान जब पस्ती में गिरता है, कैसे मुंह के बल गिरा और हिलाक हो गया, फिसला, मुंह के बल जाकर गिरा, फिर इंसान उठ ही नहीं जाता, कोई हड्डी टूट जाती है, कभी मौत वाकया हो जाती है। तो यहां पे किन लोगों के लिए तासन है? जिन्होंने कुफर किया, तो उनके लिए गिर जाना है, उनके लिए तबाही है। वह अदल अमालहुम, और अल्लाह उनके अमाल भी बर्बाद कर देगा। ईमान लाने वालों के लिए क्या है? नुसरत और साबित कदमी। अब आप देख लें कि वो लोग जो इंफरादी और इज्तमाई जिंदगी में ईमान लाने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते, तो फिर अल्लाह भी उनको उनकी हाथों में उनकी लगाम छोड़ देता है। कोई सूद के गढ़ में गिरा हुआ है, कोई रिश्वत के उसमें है, कोई हरामकारी में है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ आमाल हैं, और उसी के अंदर उन्हीं के गढ़ों में अल्लाह ने उनको फेंक दिया है। निकलना चाहते हैं लोग, बुराइयों से गुनाहों की दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतने गंभीर रास्ते हो चुके हैं, इतने पुरपेच हो चुके हैं कि अब वो निकलें कैसे, उससे बाहर आए कैसे। एक लड़का, माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए हॉस्टल में छोड़ा, और यही की मिसाल है, हॉस्टल में छोड़ा और माँ बाप पैसे भेजते रहे और वो पढ़ाई के बजाय किसी से इश्क करता रहा। फिर उसके बाद उसने ऐसे बोले माँ बाप से, पता ही ना चला कि वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ ना। फिर माँ बाप को अचानक पता चला कि वो उसने किसी गैर मुस्लिम जो लड़की है उससे शादी की है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से कह कला करके उन्होंने, उस बच्ची ने कलमा पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो है हर रोज की लड़ाई है, हर रोज की लड़ाई। माँ जो है जैसे खून के आंसू नहीं कोई रोता, उस जमाने में भी और आज भी वो रोती है ना। और अब वो क्या बता, लड़का छोड़ना चाहता है उस लड़की को, लेकिन छोड़ नहीं सकता। हत्ता के उसने पुलिस को कॉल करके लड़के को घर से भी निकलवा दिया, उसकी सारी चीजें ले ली। अब पुलिस क्या कहती है कि तुम घर में जा नहीं सकते, तुम चीजें ले नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ के, और फिर क्या है कि इमिग्रेशन भी मिल जाती है। तो कई, यानी आप निकलना चाहते हैं, मुझे बार बार ये बात याद आ रही थी कि वो निकलना चाहता है, अब निकल नहीं, अब फौरन नहीं निकल सकता, कहीं जा नहीं सकता, वो चाहता है कहीं और ही चला जाए। लेकिन अब पुलिस, और फिर वो औरत, और फिर वो, जैसे बहुत सी चीजों पे लोगों की भी नजर होती है ना। आप तो छोड़ते हैं कंबल को, फिर कंबल आपको नहीं छोड़ता। आप तो अब सूद को छोड़ना चाहते हैं, सूद पर जो घर ले लिया है, अब इतना ज्यादा सूद हो चुका है, अब सूद से निकलें कैसे? तो बहुत सी और मिसालें आप देख सकती हैं, अल्लाह इनके अमाल भी जाया कर देगा और इनको तबाह बर्बाद कर देगा। क्यों? जालिका बेअन्नहुम करेहू मा अनज़लल्लाह, बड़ी सख्त आयत है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इन्होंने कराहत की, इन्होंने नागवार समझा जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया था। क्या नाजिल किया? कुरान को भी और जो रसूल को भेजा, वही ये मतलू और गैर मतलू। फअहबता आमालहुम, तो अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए। और आपको पता है ना कि ऊंट खाना खाए और उसके पेट में ऐसी बीमारी हो जाए कि सारा खाना खत्म हो जाए, जाया हो जाए, है ना, पेट फूल जाए, तो फिर तो मौत वाकया हो जाती है ना। तो हबता के यही मानी होते हैं कि खाना जुज्वे बदन बनने की बजाय पेट ही फूल जाए, तो उनके सारे अमाल जाया हो गए। अफलम यसीरू फिल अर्दी, क्या ये नहीं देखते जमीन में? क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की? अफलम यसीरू फिल अर्दी, क्या इन्होंने जमीन में चल फिर कर जो है सैर नहीं की? फयन जरूर के वो देखते कई फकाना आकिबतुल्लजीना मिन कबलिहिम, कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे, और वो कैसा अंजाम था? दम्मर अल्लाह अलैहिम, कि अल्लाह ताला ने इनको तहस नहस कर दिया। दम्मर के मानी होते हैं किसी को जड़ से उखेड़ फेंकना, बिल्कुल ही खत्म करके रख देना। वलिल काफिरीना अम्सालुहा, और काफिरों के लिए हैं, क्या है काफिरों के लिए? काफिरों के लिए फिर ऐसी ही मिसालें होती हैं, ऐसी ही सजाएं होती हैं। तो क्या मतलब है? कि जो कौमें सरकशी की रविश इख्तियार करती हैं तो अल्लाह भी मुख्तलिफ अजाब भेजकर उनको तबाह बर्बाद कर देता है। एक तो ये मानी है। दूसरे मानी ये है कि अल्लाह ने जिस तरह काफिरों को दुनिया में तरह तरह की सजाएं दी, इस तरह कई तरह की सजाएं वो आखिरत में भी देगा। वलिल काफिरीना अम्सालुहा, और काफिरों के लिए ऐसी ही मिसालें हैं, कुफर करने वालों के लिए ऐसी ही मिसालें हैं। जालिका भी अन्नल्लाह, ये सब इसलिए हुआ क्यों कि अल्लाह जो है क्या है, मौला अल्लज़ीना आमनू, मौला है, वली है, कारसाज है, हमायती है उनका जो ईमान लाए, उनका हामी है। वह अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और जो कुफर करने वाले हैं इनका कोई मौला नहीं है, इनका कोई साथी नहीं है। गजवाए उहद में रसूलुल्लाह जख्मी होकर चंद सहाबा के साथ एक घाटी में ठहरे हुए थे। उस वक्त अबू सुफयान ने नारा लगाया, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जिसे जवाब दो, तो सहाबा ने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। तो क्या मतलब है कि जो नेक लोग होते हैं ना, हर मुश्किल घाटी में, हर परेशानी में जो है उनका काम होता है ईमान और फिर इस्तकामत, और फिर अल्लाह ही उनका जो है वो सहारा होता है, और अल्लाह ही जो है वो उनका मददगार होता है, अल्लाह ही उनका कारसाज होता है। ये है असल पैगाम। तो ईमान लाने वालों को मिलेगी जन्नत, दुनिया भी उनकी संवर गई और आखिरत भी उनकी संवर गई, और कुफर करने वालों को क्या मिलेगा कि दुनिया भी उनकी बर्बाद और आखिरत भी उनकी बर्बाद, और उनका कोई कारसाज और हमायती नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे और हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए। हसबुनल्लाहु नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। तो ऐसी दुआएं पढ़नी चाहिए जब भी कोई भी जो भी अच्छा काम है जो अल्लाह की अतात वाला है, बस राइट नो फैसला कर ले कि मुझे वही करना है। कोई भी जो भी गुनाहों के काम है, जो भी गुनाह है, उनको अपनी जिंदगी से ऐसे उतार फेंके जैसे कि खिजा में दरख्तों से आप पीले पत्ते नहीं झड़ते हुए देखती, जैसे अपना कचरा घर से आप निकाल कर बाहर फेंक देती हैं, फिर कुछ ना सोचे कि क्या नुकसान है। बाद लोग पर्दा नहीं करते, बेटी को करने नहीं दे रहे थे कोई कि वो फिर इसका रिश्ता नहीं होगा। अगर हमने झूठ ना बोला तो तिजारत नहीं चलेगी, अगर सूद पर काम ना किया तो फिर तरक्की कैसे करेंगे? तो भूल जाएं कि फिर फता सल्लहुम व अदल्ला आमालहुम, याद रखें, और भूल जाएं कि फिर तरक्की होगी। फिर तो क्या है कि अंदर ही अंदर जड़ें खत्म हो जाती हैं इंसान की। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।